अध्याय 53 पूर्व न्यायाधीश। ये अध्याय न्यायियों 6 से 8, 10 पर आधारित है। कनान में बस जाने के पश्चात गोत्रों ने देश की विजय को संपूर्ण करने के लिए कोई सशक्त प्रयत्न नहीं किया। जीते हुए भूखंड से संतुष्ट उनका उत्साह घट गया और युद्ध को समाप्त कर दिया गया। परंतु जब इजरायली सामर्थी थे तब उन्होंने कनानियों से बेगारी ली, परंतु उन्हें पूरी रीति से न निकाला। न्यायियों 1:28। प्रभु ने अपनी ओर से इज़राइल से की गई प्रतिज्ञाओं को ईमानदारी से पूरा कर दिया था। यहोशू ने कनानियों की शक्ति को समाप्त कर दिया था और भूमि को गोत्रों में विभाजित कर दिया था। अब परमेश्वर की सहायता से उस देश से वहां के निवासियों को निर्वासित करना उनका काम था, लेकिन ऐसा करने में वे असफल रहे। कनानियों के साथ संधि करने उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और इस प्रकार वे उस शर्त को पूरा करने में असफल रहे जिसके आधार पर परमेश्वर ने उन्हें कनान का स्वामित्व देने का आश्वासन दिया था। सिने पर परमेश्वर के साथ उनके प्रथम संपर्क से उन्हें मूर्ति पूजा के प्रति चेतावनी दी गई थी। व्यवस्था की घोषणा के तुरंत बाद उन्हें कनान की जातियों से संबंधित मूसा द्वारा संदेश भेजा गया था, उनके देवताओं को दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना और न उनके से काम करना, वरन उन मूर्तियों का पूरी रीति से सत्यनाश कर डालना और उनके प्रस्तर पिंडों को तोड़ देना। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। निर्गमन 23:24-25। उन्हें आश्वासन दिया गया कि जब तक वे आज्ञाकारी रहेंगे परमेश्वर उनके शत्रुओं को उनके सामने वश में कर लेगा। जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सभी के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा बैठा दूंगा कि वे व्याकुल हो जाएंगे, और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा, और मैं तुझसे पहले बर्रों को भेजूंगा जो हिब्बी, कनान और हित्ती लोगों को तेरे सामने से भागकर दूर कर देंगे। मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में नहीं निकाल दूंगा, ऐसा ना हो देश उजाड़ हो जाए और बनैले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। जब तक तू फल फूल कर देश को अपने अधिकार में न कर ले तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। मैं उस देश के निवासियों को भी तेरे वश में कर दूंगा और तू उन्हें अपने सामने से बरबस निकालेगा। तू न तो उनसे वाचा बांधना और न उनके देवताओं से, वे तेरे देश में रहने न पाएं, ऐसा न हो कि वे तुझसे मेरे विरुद्ध पाप कराएं, क्योंकि यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे तो यह तेरे लिए फंदा बनेगा। निर्गमन 23:27-33। परमेश्वर ने कनान में अपने लोगों की नैतिक बुराइयों के ज्वार को रोकने के लिए एक सशक्त वक्षमीत की तरह स्थापित किया था ताकि संसार में बुराइयों की बाढ़ ना आ सके। यदि इज़राइल परमेश्वर के प्रति सत्यनिष्ठ होता तो परमेश्वर चाहता था कि वे विजय प्राप्त करते रहें और देशों को जीतें। वो उनके हाथों में कनानियों से अधिक सशक्त और महान जातियों को दे देगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी, यदि तुम इन सब आज्ञाओं के मानने में जो तुम्हें सुनाता हूं सावधानी बरतोगे तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा और तुम अपने से बड़ी और सामर्थी जातियों के अधिकारी हो जाओगे। जिस भी स्थान पर तुम्हारे पैर पड़ेंगे वे सब तुम्हारे हो जाएंगे, अर्थात बीहर से लेकर लबानोन तक, फरात नदी से लेकर पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारी सीमा होगी। तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा ना रह सकेगा, क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे उन सब पर रहने वालों के मन में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर और थरथराहट उत्पन्न कर देगा। व्यवस्था विवरण 11:22-25। लेकिन अपने उत्कृष्ट भविष्य से उदासीन उन्होंने सुगमता और आत्मतुष्टि का मार्ग चुना। देश पर विजय को पूरा करने के अवसर को उन्होंने जाने दिया और कई पीढ़ियों तक इन बचे हुए मूर्ति पूजक लोगों द्वारा परेशान रहे, जैसे कि भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि वे उनकी आंखों में चुभन और उनकी पसली में कांटे के समान होंगे। गिनती 35:55। इजरायली उन्हीं जातियों से हिलमिल गए और उनके व्यवहारों को सीख लिया। भजन संहिता 106 आयत 35। उन्होंने कनानियों के साथ अंतरजातीय विवाह किए और मूर्ति पूजा पूरे देश में महामारी की तरह फैल गई। उन्होंने कनान की मूर्तियों पर बलि चढ़ाई जो उनके लिए जाल समान थी। उन्होंने अपने बेटे बेटियों को पिशाचों के लिए बलिदान किया और देश लहू से दूषित हो गया। तब यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का और उसको अपने निज भाग से घृणा आई। भजन संहिता 106 आयत 6-40। जब तक कि यहोशू द्वारा निर्देश प्राप्त पीढ़ी विलुप्त न हुई, मूर्ति पूजा ने कम प्रगति की, लेकिन अभिभावकों ने अपने बच्चों के स्वधर्म त्याग का मार्ग तैयार कर दिया था। कनान पर अधिकार पाने वालों की ओर से परमेश्वर के प्रतिबंधों की अवमानना ने बुराई का बीज बो दिया जो कई पीढ़ियों तक कड़वा फल देती रही। इब्रियों की सीधी सीधी आदतों ने उनके शारीरिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा था, लेकिन मूर्ति पूजकों की संगति में वे भूख और लालसा में लिप्त हो गए, जिससे उनकी शारीरिक शक्ति कम होती चली गई और उनकी मानसिक व सात्विक शक्तियां कमजोर हो गईं। अपने पापों के कारण इजरायली परमेश्वर से दूर हो गए, उसकी शक्ति से वे वंचित हो गए और अब वे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ हो गए। इस कारण वे उन जातियों के अधीन हो गए जिनको परमेश्वर की सहायता से वे अपने अधीन कर सकते थे। उन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, और जंगल में उनकी अगुवाई भेड़ों व बकरियों के झुंड की सी की थी। उन्होंने ऊंचे ऊंचे पूजा स्थल बनाकर उसके क्रोध को भड़काया और देवी देवताओं की मूर्तियों द्वारा उसे ईर्ष्या करने को विवश किया। फिर परमेश्वर ने शिलों के पवित्र तंबू को त्याग दिया। ये वही तंबू था जहां परमेश्वर लोगों के बीच रहता था। फिर उसने अपने लोगों को दूसरी जातियों का बंदी बनने दिया और परमेश्वर के गौरव को शत्रुओं ने छीन लिया। न्यायियों 2 आयत 12, भजन संहिता 78 आयत 52, 58, 60, 61। फिर भी उसने अपने लोगों को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। एक बकिया कलीसिया जो यहोवा के प्रति सत्यनिष्ठ थी सर्वदा रही, और समय समय पर परमेश्वर ने इसराइलियों को उनके शत्रुओं से छुड़ाने के लिए और मूर्ति पूजा को दूर करने के लिए बहादुर और विश्वसनीय मनुष्यों को खड़ा किया। लेकिन जब छुटकारा दिलाने वाला मृत्यु को प्राप्त हो जाता था और लोग उसके अधिकार से मुक्त हो जाते थे, वे धीरे धीरे पुनः मूर्ति पूजा करने लगे थे, और इस प्रकार पुनः पतन और सुधार दंड की, पापों के अंगीकार और छुटकारे की कहानी बार बार दोहराई जाती थी। मेसोपोतामिया और मोआब के राजा और इनके पश्चात पलिश्ती और सिसेरा के नेतृत्व में हाजोर के कनानी क्रम से इसराइलियों के तानाशाह बने। ओतनियल, शमगर, एहुद, दबोरा और बाराक को उनके लोगों के मुक्तिदाता के रूप में खड़ा किया गया, लेकिन फिर से इसराइली वो करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और प्रभु ने उन्हें मिद्यान के हाथों में जाने दिया। इससे पहले यर्दन के पूर्व में रहने वाले गोत्रों पर दमनकारियों का हाथ हल्का ही रहा था, लेकिन वर्तमान विपत्तियों में वे पहले कष्टभोगी थीं। कनान के दक्षिण में अमालेकी और उसकी पूर्वी सीमा और सीमा पार मरुस्थल में मिद्यानी अभी इसराइल के कट्टर शत्रु थे। मूसा के समय में मिद्यानी इसराइलियों द्वारा लगभग नष्ट कर दिए गए थे, लेकिन उसके बाद से ही उनमें बहुत वृद्धि हुई थी और वे सशक्त और बहुसंख्यक हो गए थे। वे प्रतिशोध के प्यासे थे, और अब जब परमेश्वर की सुरक्षा वाला हाथ इसराइल पर से उठ गया था, उनके पास अवसर उपलब्ध हो गया। न केवल यर्दन के पूर्व में बसने वाले गोत्र, वरन समस्त देश ने विध्वंस के कारण कष्ट उठाया। मरुभूमि के असभ्य क्रूर निवासी टिड्डियों के दल के समान, न्यायियों 6:5, अपने मवेशियों और भेड़ बकरियों सहित प्रदेश में घुस आए और भक्षक महामारी की तरह यर्दन नदी से लेकर पलिश्ती तराई तक फैल गए। उपज ने पकना प्रारंभ ही किया था जब वे आए, और जब तक पृथ्वी के अंतिम फल इकट्ठे न कर लिए गए वे वहीं रहे। उन्होंने खेतों की अतिरिक्त उपज को लूट लिया, निवासियों के साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें भी लूट लिया और मरुस्थल को लौट गए। इस प्रकार खुले प्रांत में रहने वाले इसराइलियों को अपने घर छोड़कर प्राचीरों से सुरक्षित शहरों में इकट्ठा होना पड़ा। गढ़ों में या पहाड़ी गुफाओं और पहाड़ी किलों में शरण लेनी पड़ी। 7 वर्षों तक ये दमन चलता रहा और फिर जब लोगों ने दुखी होकर परमेश्वर की ताड़ना पर ध्यान दिया और अपने पापों का अंगीकार किया तो परमेश्वर ने फिर से उनके लिए सहायक को खड़ा किया। गिदोन मनश्शे के गोत्र से योआश का पुत्र था। जिस वर्ग से उसका परिवार संबंधित था उसका कोई प्रमुख स्थान नहीं था, लेकिन योआश का घराना साहस और निष्ठा के लिए माना जाता था। उसके साहसी पुत्रों के लिए कहा गया है, एक एक का रूप राजकुमार का सा था। मिद्यानों के विरुद्ध संघर्ष में सिवाय एक के सभी मारे गए थे और गिदोन के नाम से घुसपैठिए भय से भर जाते थे। गिदोन को उसके लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए पवित्र आदेश मिला। उस समय वो गेहूं झाड़ रहा था। अन्न की कुछ मात्रा उसने छुपाकर रखी थी और सामान्य खलिहान में झाड़ने का दुस्साहस न कर उसने दाखरस के कंड के पास एक स्थान को इस काम के लिए चुना। अंगूर पकने की ऋतु अभी दूर थी, इसलिए दाख की बारियों पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। जब गिदोन निस्तब्धता और एकांत में परिश्रम करता था, वो उदास होकर इसराइल की स्थिति के बारे में चिंतन करता और विचार करता कि किस प्रकार वो अपने लोगों पर से दमनकारियों के जुए को तोड़ सकता था। अचानक से उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर विपत्ति क्यों आती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र देश से छुड़ा नहीं लाया? वे कह रहे, अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। स्वर्ग के संदेशवाहक ने कहा, अपनी इसी शक्ति में जा और तू इसराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? गिदोन कोई प्रतीक चाहता था कि उसे संबोधित करने वाला वाचा का स्वर्गदूत था, जिसने बीते समय में इसराइल के लिए कार्य किए थे। अब्राहम के साथ बातचीत करने वाले परमेश्वर के दूत उसके आतिथ्य का मान रखने के लिए रुके थे और अब गिदोन ने पवित्र दूत से विनती की कि वो उसका अतिथि बनकर रहे। वो शीघ्र ही अपने तंबू में गया और उसने अपनी सीमित सामग्री में से बकरी का एक बच्चा और अखमीरी रोटियां तैयार की और उसके सामने लाकर रखी। लेकिन स्वर्गदूत ने उससे कहा, मांस और अखमीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और शोरबे को उंडेल दे। गिदोन ने ऐसा ही किया और फिर उसका वांछनीय चिन्ह उसे दिया गया। यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अखमीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अखमीरी रोटियां भस्म हो गईं और यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। गिदोन के पिता योआश ने, जो अपने देशवासियों की मूर्ति पूजा में भागीदार था, ओप्र में जहां वो रहता था बाल देवता के लिए एक बड़ी सी वेदी तैयार की थी, जहां शहर के लोग आराधना करते थे। गिदोन को आदेश दिया गया कि वो उस वेदी को नष्ट कर दे और उस चट्टान पर जहां भेंट भस्म हो गई थी यहोवा के लिए एक वेदी तैयार करे और परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाए। परमेश्वर के लिए बलि की भेंट चढ़ाने का कार्य याजकों को सौंपा गया था और शिलो की वेदी तक सीमित था, लेकिन जिसने व्यावहारिक विधि का संस्थान किया और जिसकी ओर उसकी सारी भेंटें संकेत करती थीं, उसके पास उसकी आवश्यकताओं को बदलने का अधिकार था। इसराइल के छुटकारे से पहले बाल की आराधना के विरुद्ध एक विधिवत प्रतिवाद होना था। अपने लोगों के शत्रुओं के साथ युद्ध करने से पहले गिदोन को मूर्ति पूजा पर युद्ध घोषित करना था। पवित्र निर्देश का निष्ठापूर्वक पालन किया गया, यह जानते हुए कि प्रकट रूप से उसका पालन करने से उसका विरोध किया जाएगा, गिदोन ने यह कार्य गुप्त रूप से किया और अपने दासों की सहायता से पूरा काम एक रात में समाप्त कर दिया। दूसरे दिन जब ओप्र के पुरुष बाल देवता की उपासना करने आए तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। यदि योआश, जिसे स्वर्गदूत के प्रकट होने की जानकारी दे दी गई थी, अपने पुत्र के बचाव में खड़ा नहीं हुआ होता तो उन्होंने गिदोन के प्राण ले लिए होते। योआश ने कहा, क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद करोगे? क्या तुम उसे बचाओगे? जो कोई उसके लिए वाद विवाद करे वह मार डाला जाएगा। सवेरे तक ठहरे रहो, तब तक यदि वह परमेश्वर हो तो जिसने उसकी वेदी गिराई है उससे वह आप ही अपना वाद विवाद करे। यदि बाल अपनी निजी वेदी का बचाव नहीं कर पाया, उस पर उसके उपासकों को सुरक्षा के लिए कैसे विश्वास किया जाता? गिदोन के प्रति हिंसा के सभी विचारों को रद्द कर दिया गया, और जब युद्ध का बिगुल बजाया गया, ओप्र के पुरुष उसके झंडे के पास एकत्रित होने वालों में सबसे आगे थे। मनश्शे के गोत्र को, जो उसका निजी गोत्र था, और आशेर, जबूलून और नप्ताली के पास संदेश भेजा गया, और सभी ने बुलावे का उत्तर दिया। अतिरिक्त प्रमाण के अभाव में कि परमेश्वर ने उसे इस कार्य के लिए बुलाया था, और ये कि वह उसके साथ रहेगा। गिदोन ने स्वयं को सेना का मुख्य होने का दुस्साहस नहीं किया। उसने प्रार्थना की, यदि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं खलिहान के फर्श पर एक भेड़ का ऊन रखता हूं। यदि भेड़ के ऊन पर ओस की बूंदे होगी जबकि सारी भूमि सूखी है, तब मैं समझूंगा कि तू अपने कहने के अनुसार मेरा उपयोग इज़राइल की रक्षा करने में करेगा। सुबह होने पर ऊन गीली थी और भूमि सूखी थी, लेकिन अब एक संदेह उत्पन्न हुआ। ऊन प्राकृतिक रूप से नमी को सोख लेता है, इसलिए परीक्षण निर्णयात्मक नहीं हो सकता। इस कारण उसने विनती की कि चिन्ह को उलट दिया जाए, और उसने विनती की कि उसकी अत्यधिक सतर्कता प्रभु को अप्रसन्न न करे। उसका निवेदन स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार प्रोत्साहन पाकर गिदोन ने घुसपैठियों से युद्ध करने के लिए अपनी सेना का नेतृत्व किया। मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग एकत्रित हुए और पार आकर यिज्रेल की तराई में डेरे डाले। गिदोन के दस्ते में केवल 32,000 पुरुष थे, लेकिन उसके सामने फैली हुई शत्रुओं की विशाल सेना के साथ ही परमेश्वर का वचन उसके पास आया, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इज़राइली ये कहकर अपनी प्रशंसा करने लगेंगे कि वे अपने भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों में ये प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथरता हो वो गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। जो कठिनाइयों और खतरों का सामना करने के लिए सहमत नहीं थे, या जिनके सांसारिक रुझान उनके हृदयों को परमेश्वर के काम से दूर करे, वे इज़राइल की सेनाओं को सशक्त नहीं बना सकते थे। उनकी उपस्थिति केवल शक्तिहीनता का कारण प्रमाणित होती है। इज़राइल में यह नियम बनाया गया था कि युद्ध में जाने से पहले पूरी सेना में ये घोषणा की जाए, तुम में से कौन है जिसने नया घर बनाया और अब तक उसे अर्पित नहीं किया है? उस व्यक्ति को अपने घर लौट जाना चाहिए। वह युद्ध में मारा जा सकता है और तब दूसरा व्यक्ति उसके घर को अर्पित करेगा। क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने अंगूर के बाग लगाए हैं किंतु अभी तक उससे कोई अंगूर नहीं लिया है? उस व्यक्ति को घर लौट जाना चाहिए। यदि वह व्यक्ति युद्ध में मारा जाता है तो दूसरा व्यक्ति उसके बाग के फल को भोगेगा। क्या यहां कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके विवाह की बात पक्की हो चुकी है? उस व्यक्ति को घर लौट जाना चाहिए। यदि वह युद्ध में मारा जाता है तो दूसरा व्यक्ति उस स्त्री से विवाह करेगा जिसके साथ उसके विवाह की बात पक्की हो चुकी है। और अधिकारियों को लोगों से ये कहना था, क्या यहां कोई ऐसा व्यक्ति है जो साहस खो चुका है और भयभीत है? उसे घर लौट जाना चाहिए, ऐसा न हो कि उसकी देखा देखी उसके भाइयों का भी हियाव टूट जाए। व्यवस्था विवरण 20 आयत 5 से 8। उसके शत्रुओं की सेना की तुलना में उसकी सेना में सैनिकों की संख्या कम थी, इसलिए गिदोन ने सामान्य घोषणा नहीं की। वह आश्चर्यचकित रह गया जब ये घोषणा की गई कि उसकी सेना बहुत विशाल थी। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों के हृदयों में विद्यमान घमंड और अविश्वास को देखा। गिदोन के भावोत्तेजक निवेदन से जागृत होकर वे सहयोग देने को तैयार हो गए थे, लेकिन मिद्यानियों की संख्या देखकर कई भयभीत हो गए थे। लेकिन यदि इजरायली विजयी हो जाते तो इन्होंने ही परमेश्वर को विजय का श्रेय देने के बजाय सारी महिमा स्वयं को दी होती। गिदोन ने परमेश्वर के निर्देश का पालन किया और भारी मन से 22,000 अर्थात उसकी संपूर्ण सेना के 2/3 से अधिक पुरुषों को अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करते देखा। फिर से परमेश्वर का आदेश उसके पास पहुंचा, अब भी लोग अधिक है, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा और जिस जिसके विषय में मैं तुझसे कहूं ये तेरे संग चले, वो तो तेरे संग चले, और जिस जिसके विषय में कहूं ये तेरे संग न जाए वो न जाए। तब वो उनको सोते के पास नीचे ले गया, इस अपेक्षा में कि वे शत्रु पर शीघ्र ही चढ़ाई करेंगे। कुछ लोगों ने बिना विलंब किए थोड़ा सा पानी हाथों में लिया और चलते फिरते उसे चुस्कियां लेकर पीते गए, लेकिन अधिकतर अपने घुटनों पर गए और उन्होंने झुककर आराम से नदी की सतह से जल को ग्रहण किया। जिन्होंने जल को अपने हाथों में लिया वे 10,000 में से 300 थे, लेकिन फिर भी इन्हें चुन लिया गया, बाकी सबको घर लौटने की अनुमति दे दी गई। अत्यंत साधारण तरीकों से चरित्र को परखा जाता है। जो संकटकाल में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने को तत्पर थे वे मनुष्य आपातकालीन स्थिति में विश्वास योग्य नहीं थे। परमेश्वर के पास आलसी और आत्मभोगी मनुष्यों के लिए कोई स्थान नहीं। उसके द्वारा चुने हुए पुरुष वे थोड़ी से थे जिन्होंने अपनी आवश्यकताओं को उनके कर्तव्य के पालन करने में विलंब करने की अनुमति नहीं दी। वे 300 चुने हुए पुरुष न केवल साहस और आत्मसंयम के स्वामी थे वरन विश्वास रखने वाले भी थे। उन्होंने स्वयं को मूर्ति पूजा से दूषित नहीं किया था। परमेश्वर उन्हें निर्देशित कर सकता था और उनके द्वारा इज़राइल को छुटकारा भी दिला सकता था। सफलता संख्या पर निर्भर नहीं होती, परमेश्वर थोड़ों के द्वारा और बहुतों के द्वारा छुटकारा दिला सकता है। वह भारी संख्या से इतना सम्मानित नहीं होता जितना कि उनके आचरण से जो उसकी सेवा करते हैं। तराई में घुसपैठियों की सेना ने पड़ाव डाला हुआ था और इजरायली पर्वतश्रु पर डेरा डाले थे। मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग टिड्डियों के समान तराई में फैले पड़े थे और उनके ऊंट समुद्र तट की बालू के किनकों के समान असंख्य थे। न्यायियों 7:12। आगामी दिन के संघर्ष के बारे में सोचते हुए गिदोन कांप उठा, लेकिन परमेश्वर ने रात में उससे बात की और उसे उसके सेवक फूरा के साथ मिद्यानियों की छावनी के पास जाने को कहा और उसे बताया कि वहां पहुंचने पर वो कुछ ऐसा सुनेगा जिससे उसे प्रोत्साहन मिलेगा। वो गया और जब वो चुपचाप अंधेरे में रुका हुआ था उसने एक सैनिक को अपने साथी को ये स्वप्न सुनाते हुए सुना, सुन जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसी टक्कर मारी कि डेरा पलट गया और चौड़ा होकर गिर गया। दूसरे ने ऐसे शब्दों में उत्तर दिया जिन्होंने उस अदृश्य श्रोता के हृदय को झकझोर दिया, ये योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है, उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत दे दिया है। गिदोन ने उन मिद्यानी अपरिचितों के माध्यम से उससे बात करते हुए परमेश्वर की वाणी को पहचान लिया। अपने दस्ते के थोड़े से पुरुषों के पास लौटकर उसने कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। पवित्र निर्देश द्वारा उसे आक्रमण की योजना का सुझाव दिया गया जिसे क्रियान्वित करने के लिए वो तुरंत निकल पड़ा। 300 पुरुषों को 3 टुकड़ियों में विभाजित किया गया। प्रत्येक पुरुष को मिट्टी के घड़े में छुपाकर एक मशाल और हाथ में नरसिंगा दिया गया। सैनिकों को इस प्रकार ठहराया गया कि वे अलग अलग दिशाओं से चढ़ाई कर सकते थे। बहुत रात होने पर गिदोन द्वारा युद्ध नरसिंगे के संकेत पर तीनों टुकड़ियों ने अपने नरसिंगे फूंके और फिर अपने घड़े तोड़कर जलती हुई मशालों को प्रदर्शित करते हुए वे शत्रु पर युद्ध की ललकार के साथ टूट पड़े। यहोवा की और गिदोन की तलवार। सोती हुई सेना चौंक कर जाग गई, उन्होंने अपने चारों ओर जलती हुई मशालों के प्रकाश को देखा। प्रत्येक दिशा में तुरही का स्वर और आक्रमणकारियों की पुकार सुनाई दे रहे थे। स्वयं को एक अपरिहार्य शक्ति की दया पर निर्भर मानकर मिद्यानी घबरा गए। खतरे की सूचना की पुकार देते हुए वे अपने प्राण बचाने के लिए भाग खड़े हुए और अपने ही साथियों को शत्रु समझकर उन्हें एक दूसरे को मार डाला। विजय का समाचार पाकर हजारों इजरायली, जिन्हें घर भेज दिया गया था, लौट आए और अपने भागते हुए शत्रुओं का पीछा करने में जुट गए। नदी के पार अपने निजी भूखंड में पहुंचने की आशा में मिद्यानी यर्दन की ओर जा रहे थे। गिदोन ने एप्रैमी लोगों के पास दूध भेजे और उन्हें दक्षिणी घाट पर भागने वालों का अवरोध करने को उकसाया। इसी दौरान अपने 300 थकमंदे पुरुषों के साथ गिदोन ने नदी को पार किया और उसका पीछा करते रहे, जो बहुत आगे निकल चुके थे। जेबह और सलमुन्ना नामक राजा, जो समस्त सेना के ऊपर थे, जो 15,000 पुरुषों की सेना के साथ बच निकले थे, गिदोन द्वारा पराजित कर दिए गए। उनकी सेना को तितर बितर कर दिया गया और प्रधानों को जीतकर मार डाला गया। इस महत्वपूर्ण पराजय में 120,000 घुसपैठिए नष्ट हुए। मिद्यानियों को सामर्थ्यहीन कर दिया गया था, जिससे कि वो इसराइल पर फिर कभी चढ़ाई नहीं कर पाए। ये संदेश तेजी से चारों ओर प्रसारित हो गए कि इसराइल का परमेश्वर फिर से अपने लोगों के पक्ष में लड़ा था। शब्द वर्णन नहीं कर सकते आसपास की जातियों के मनों के भय का, जब उन्हें ज्ञात हुआ कि दुस्साहसी रणकुशल लोगों को इतने सामान्य साधनों द्वारा पराजित कर दिया गया था। जिस अगुवे को परमेश्वर ने मिद्यानियों को पराजित करने के लिए चुना था, उसका इसराइल में कोई विशिष्ट स्थान नहीं था। वो ना ही शासक था, ना याजक, और ना ही वो लेवी था। वो स्वयं को अपने पिता के घर में सबसे न्यूनतम समझता था, लेकिन परमेश्वर उसमें एक साहसी और सत्यनिष्ठ मनुष्य देखता था। उसे स्वयं पर विश्वास नहीं था और वो प्रभु के मार्गदर्शन में चलने को तत्पर था। परमेश्वर अपने काम के लिए हमेशा ही अत्यंत प्रतिभा संपन्न मनुष्यों को नहीं चुनता, लेकिन वो उन्हें चुनता है जिनका वो भली भांति उपयोग कर सकता है। नीति वचन में लिखा है, महिमा से पहले नम्रता आती है। प्रभु उनके माध्यम से सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है जिन्हें अपनी अपर्याप्तता का एहसास होता है और जो उसे अपना अगुवा और अपनी सामर्थ्य का स्रोत मानकर उस पर निर्भर करते हैं। अपने सामर्थ्य को उनकी निर्बलता के साथ जोड़कर वो उन्हें सबल बनाता है और उनकी अज्ञानता का संपर्क अपनी बुद्धिमता से कराकर उन्हें बुद्धिमान बनाता है। यदि वे सच्ची दीनता को संजोए, प्रभु अपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन बहुत कम है ऐसे लोग जो सफलता या बहुत भारी उत्तरदायित्व दिए जाने पर आत्मविश्वासी नहीं बनते या परमेश्वर पर उनकी निर्भरता को नहीं झेलते। इस कारण अपने काम के लिए माध्यमों चुनाव में संसार द्वारा महान, प्रतिभा संपन्न और मेघावी माने जाने वाले सम्मानीय व्यक्तियों को छोड़ देता है। वे प्रायः घमंडी और आत्मसंपन्न होते हैं। वे स्वयं को परमेश्वर के मार्गदर्शन के बिना कार्य करने के योग्य समझते हैं। यरीहो की परिक्रमा करते हुए यहोशू की सेना द्वारा नरसिंगा फूकने का साधारण कृत्य और मिद्यान की सेनाओं के चारों तरफ गिदोन की छोटी सी टुकड़ी द्वारा अपनाए गए इसी तरीके को परमेश्वर की सामर्थ्य द्वारा उसके शत्रुओं को पराजित करने के लिए कारगर बनाया गया। परमेश्वर की सामर्थ्य और बुद्धिमता को छोड़कर मनुष्य द्वारा बनाई गई सबसे उत्कृष्ट प्रणाली भी असफल प्रमाणित होगी, जबकि विश्वास और दीनता के साथ अपनाए गए और परमेश्वर द्वारा नियुक्त सबसे निराशामय तरीके सफल हो जाते हैं। परमेश्वर में विश्वास और उसकी इच्छा का पालन आध्यात्मिक युद्ध में मसीहों के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि कनानियों के साथ युद्ध करने में गिदोन और यहोशू के लिए आवश्यक था। इसराइल के पक्ष में अपने सामर्थ्य के लगातार प्रदर्शनों के द्वारा परमेश्वर उन्हें उस पर विश्वास रखना सिखा रहा था, ताकि वे प्रत्येक आपातकालीन स्थिति में विश्वास के साथ उससे सहायता मांगे। आज भी वो लोगों के प्रयत्नों में सहयोगी होने और बलहीन साधनों के माध्यम से महान उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए सहमत है। संपूर्ण स्वर्ग प्रतीक्षा में है कि हम उसके विवेक और सामर्थ्य की मांग करें। परमेश्वर ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। इफिसियों 3:20।
गिदोन अपनी प्रजा के शत्रुओं का पीछा करके लौटा ही था कि उसे अपने ही देशवासियों द्वारा निंदा और आरोपों का सामना करना पड़ा। जब उसके बुलाने पर इसराइलियों ने मिद्यानियों के विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन किया था, एप्रैम का गोत्र पीछे रह गया था। उन्हें यह प्रयत्न एक खतरनाक कार्य लगा था, और क्योंकि गिदोन ने उन्हें कोई विशिष्ट बुलावा नहीं भेजा, इस कारण अवसर का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपने भाइयों के साथ सम्मिलित न होने का बहाना बनाया। लेकिन जब एप्रैमियों के पास इसराइल की विजय का समाचार पहुंचा, तो वे ईर्ष्या से भर गए कि वे इसमें सहभागी न थे। मिद्यानियों को खदेड़ देने के पश्चात गिदोन के निर्देशानुसार एप्रैमियों ने यर्दन के घाटों पर अधिकार कर लिया था, ताकि पलायकों को भाग जाने से रोका जा सके। इस युक्ति से भारी संख्या में शत्रु मारे गए, जिनमें ओरेब और जेब दो हाकिम भी थे। इस प्रकार एप्रैम के पुरुषों ने युद्ध की आगे की कार्यवाही की और विजय को संपूर्ण किया। लेकिन वे द्वेषपूर्ण और क्रोधित थे, मानो गिदोन स्वयं की इच्छा और निर्णय का अनुसरण कर रहा हो। इसराइल की विजय में वे परमेश्वर के योगदान को न समझ पाए। उनके छुटकारे में उसकी दया और उसके सामर्थ्य के प्रति उन्होंने आभार प्रकट नहीं किया, और इस तथ्य ने उन्हें परमेश्वर के विशेष माध्यम के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य ठहराया। विजय के जयचिन्हों के साथ लौटकर वे क्रुद्ध अवस्था में गिदोन के पास आए और बोले, तूने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया है कि जब तू मिद्यान से लड़ने को चला तब हमको नहीं बुलवाया?
गिदोन ने उनसे कहा, तुम्हारी तुलना में मैंने अब क्या किया? क्या एप्रैम की छोड़ी हुई दाख भी अबीएजेर की सब फसल से अच्छी नहीं है? तुम्हारे ही हाथों में परमेश्वर ने ओरेब और जेब नामक मिद्यान के हाकिमों को दे दिया है, तब तुम्हारे बराबर मैं कर ही क्या सका? ईर्ष्या की भावना कलह में भड़क सकती थी, जिसके कारण रक्तपात और संघर्ष होता, लेकिन गिदोन के नम्रतापूर्ण उत्तर ने एप्रैमियों के क्रोध को शांत कर दिया, और वे शांतिपूर्वक अपने घरों को लौट गए। सिद्धांतों के संदर्भ में दृढ़ और अटल और युद्ध में शूरवीर सूरमा गिदोन शिष्टाचार की भावना का भी धनी था, जो कम ही देखने को मिलती है। मिद्यानियों से छुटकारे के लिए आभारी होकर इसराइलियों ने प्रस्ताव रखा कि गिदोन को उनका राजा बनना चाहिए और उसके वंशजों के लिए सिंहासन निश्चित किया जाना चाहिए। ये प्रस्ताव धर्मतंत्र के सिद्धांतों का प्रत्यक्ष खंडन था। परमेश्वर इसराइल का राजा था, और उनके द्वारा सिंहासन पर एक मनुष्य को विराजमान करना उनके स्वर्गीय सम्राट का तिरस्कार करना था। गिदोन इस तथ्य को पहचानता था। उसका उत्तर प्रमाणित करता है कि उसका उद्देश्य कितना सत्य और उत्कृष्ट था। उसने घोषणा की, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता न करूंगा, और न मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा। यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा।
लेकिन गिदोन एक अन्य गलती कर बैठा, जिसके कारण उसके घराने पर और संपूर्ण इसराइल पर विपत्ति आ पड़ी। महान संघर्ष के पश्चात निष्क्रियता का काल संघर्ष की कालावधि से भी अधिक खतरों से भरपूर होता है। अब गिदोन के सम्मुख ये खतरा था। बेचैनी की भावना ने उसे घेर लिया। इससे पहले वो परमेश्वर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में संतुष्ट था, लेकिन अब पवित्र मार्गदर्शन के लिए रुकने के बजाय उसने स्वयं के लिए योजना बनाना आरंभ कर दिया। जब परमेश्वर की सेनाओं को महत्वपूर्ण विजय प्राप्त होती है, शैतान परमेश्वर के कार्य को विफल करने के अपने प्रयत्नों को दुगना कर देता है। इस प्रकार गिदोन के मन में वे विचार और योजनाएं सुझाई गईं जिनके द्वारा इसराइल की प्रजा पथभ्रष्ट हो गई।
गिदोन को स्वर्गदूत के प्रकट होने के स्थान पर बलि की भेंट चढ़ाने की आज्ञा दी गई थी, इसलिए वो इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि उसे याजक के तौर पर कार्यरत होने को नियुक्त किया गया है। पवित्र सहमति के लिए रुके बिना उसने उचित स्थान प्रदान करने का और उस पवित्र स्थान पर वैसी ही आराधना की व्यवस्था को स्थापित करने का निश्चय किया। सशक्त लोकप्रिय भावना उसके पक्ष में थी, इसलिए अपनी योजना को क्रियान्वित करने में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। उसके निवेदन पर मिद्यानियों से लिए सोने के कर्ण आभूषण उसे लूट के उसके हिस्से के तौर पर दिए गए। लोगों ने इसके अलावा भी
कई बहुमूल्य वस्तुएं और मिद्यान के हाकिमों के सुसज्जित वस्त्र भी इकट्ठे किए। जुटाए गए सामान से गिदोन ने एक एपोद, जो महायाजक द्वारा पहने जाने वाले एपोद का प्रतिरूप था, बनवाया। उसका यह कृत्य स्वयं उसके लिए, उसके परिवार के लिए और इसराइल के लिए एक फंदा प्रमाणित हुआ। इस अनधिकौत आराधना के कारण कई लोगों ने अंततः प्रभु को बिल्कुल त्याग दिया और मूर्तियों को पूजने लगे। गिदोन की मृत्यु पश्चात भारी संख्या में लोगों ने, जिनमें उसका परिवार भी था, स्वधर्म त्याग किया। जिस व्यक्ति ने उनमें से मूर्ति पूजा को उखाड़ फेंका था, उसी के द्वारा वे परमेश्वर से दूर कर दिए गए।
बहुत कम है वे लोग जिन्हें एहसास होता है कि कर्मों और शब्दों का प्रभाव कितना व्यापक होता है। कितनी बार माता पिता की गलतियां उनकी संतान और संतान की संतानों पर दुष्प्रभाव डालती है। कार्य करने वाले कब्र में चले जाते हैं पर प्रभाव छोड़ जाते हैं। सभी दूसरों पर प्रभाव डालते हैं और उस प्रभाव के परिणाम के लिए वे उत्तरदायी होते हैं। कर्मों और शब्दों में प्रभावशाली शक्ति होती है और इसके बाद का लंबा समय हमारे यहां के जीवन का प्रभाव दिखाएगा। हमारे शब्दों और कर्मों के प्रभाव की प्रतिक्रिया हम ही पर आशीष या श्राप के रूप में होती है। यह धारणा जीवन को अत्यंत गंभीरता प्रदान करती है और हमें दीनता भरी प्रार्थनाओं द्वारा परमेश्वर की ओर खींचती है, ताकि वो हमें उसकी बुद्धिमता से मार्गदर्शित कर सके। जो उच्चतम पदों पर खड़े हैं, वे हमें पथभ्रष्ट कर सकते हैं। सबसे बुद्धिमान गलती करते हैं, सबसे शक्तिशाली डगमगा सकते हैं और ठोकर खा सकते हैं। हमारी सुरक्षा इसी में है कि जिस मार्ग पर हम चलें, उस परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए चलें जिसने कहा है, मेरे पीछे हो लें।
गिदोन के मरणोपरांत इसराइलियों ने अपने परमेश्वर यहोवा को, जिसने उन्हें चारों ओर के सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया था, स्मरण न रखा, और न उन्होंने यरुब्बाल अर्थात गिदोन की उस सारी भलाई के अनुसार जो उसने इसराइलियों के साथ की थी, उसके घराने को प्रीति दिखाई। उनके न्यायी और मुक्तिदाता गिदोन को दे सब कुछ भूलकर इसराइल के लोगों ने उसके अकुलीन पुत्र अबीमेलक को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया, जिसने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए एक को छोड़कर गिदोन की सभी वैध संतानों की हत्या कर दी। जब मनुष्य परमेश्वर का भय मानना समाप्त कर देते हैं, तो वे सम्मान और अखंडता से अलग होने में विलंब नहीं करते। परमेश्वर की दयालुता के प्रति आभारी होने से हम उन लोगों के भी आभारी होंगे, जिन्हें गिदोन की तरह लोगों को आशीषित करने के साधन के रूप में उपयोग किया गया है। गिदोन के घराने के प्रति इसराइल का निर्दयतापूर्ण व्यवहार उन लोगों से अपेक्षित किया जा सकता है, जिन्होंने परमेश्वर के प्रति घोर अकृतज्ञता प्रकट की थी।
अबीमेलेक की मृत्यु के बाद मूर्ति पूजा पर रोक लगाने के लिए कुछ समय तक न्यायियों का शासन रहा, लेकिन कुछ ही समय पश्चात लोग उनके चारों ओर की अधर्मी जातियों के रीति रिवाजों में लौट गए। उत्तर में बसे गोत्रों में सीरिया और सिदोन के देवी देवताओं के बहुत उपासक थे, दक्षिण में पलिश्तियों की मूर्तियां, पूर्व में मोआब और अम्मोन की मूर्तियों ने इसराइलियों के हृदय को उनके पूर्वजों के परमेश्वर से फिरा दिया। लेकिन स्वधर्म त्याग शीघ्र ही अपना दंड लेकर आया। अम्मोनियों ने पूर्वी गोत्रों को अधिकृत किया और यर्दन को पार करके यहूदा और एप्रेम के राजक्षेत्र पर चढ़ाई की। पश्चिम में पलिश्ती समुद्र के किनारे की तराई से ऊपर की ओर व्यापक रूप से लूटपाट करते और आगजनी करते हुए आए। एक बार फिर इजरायली निर्दयी शत्रुओं के द्वारा अधिकृत होने के लिए छोड़ दिए गए प्रतीत हो रहे थे। फिर से लोगों ने उससे सहायता मांगी, जिसे उन्होंने छोड़ दिया था और अपमानित किया था। तब इसराइलियों ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हमने जो अपने परमेश्वर को त्याग कर बाल देवताओं की उपासना की है, ये हमने तेरे विरुद्ध महापाप किया है। लेकिन दुख ने उनसे सच्चा प्रायश्चित नहीं करवाया। वे इसलिए शोकित थे क्योंकि उनके पापों के कारण उन पर कष्ट आए थे, लेकिन इसलिए नहीं कि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करके उसका अपमान किया था। सच्चे प्रायश्चित का तात्पर्य केवल पाप के लिए दुख नहीं है, ये पाप से मुंह फेर लेने का दृढ़ संकल्प है।
परमेश्वर ने अपने एक भविष्यद्वक्ता के माध्यम से उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुमको मिस्रियों, एमोरियों, अमोनियों और पलिश्तियों के हाथ से न छुड़ाया था? फिर जब सीदोनी और अमालेकी और माउनी लोगों ने तुम पर अंधेर किया और तुमने मुझे पुकारा, तब मैंने तुमको उनके हाथ से भी न छुड़ाया। तो भी तुमने मुझे त्याग कर पराये देवताओं की उपासना की है, इसलिए मैं फिर तुमको न छुड़ाऊंगा। जाओ, अपने माने हुए देवताओं की दुहाई दो, तुम्हारे संकट के समय वे ही तुम्हें छुड़ाएं।
ये गंभीर और भयावह शब्द विवेक को एक अन्य दृश्य की ओर ले जाते हैं।
अंतिम निर्णय का महान दिन, जब परमेश्वर की दया का तिरस्कार करने वाले और उसके अनुग्रह को ठुकराने वालों का सामना उसकी दंडाज्ञाओं से होगा। जिन्होंने भी परमेश्वर द्वारा दिए गए समय, साधनों और विवेक की क्षमता को इस संसार के देवी देवताओं की उपासना में समर्पित किया है, उन्हें उस न्यायालय में जवाब देना होगा। सांसारिक आमोद प्रमोद और सुख सुविधाओं के मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने अपने सच्चे और प्रिय मित्र को छोड़ दिया है। किसी समय वे परमेश्वर के पास लौटना चाहते थे, लेकिन संसार ने अपने छलावों और मूर्ता से ध्यान मग्न कर दिया। चंचल मनोरंजन, वस्त्रों के घमंड, स्वाभाविक इच्छाओं की पूर्ति ने उनके हृदयों को कठोर और अंतरात्मा को सुन्न कर दिया, जिससे सत्य की आवाज सुनी न गई। कर्तव्य का तिरस्कार किया गया। असीम महत्व की बातों को बहुत कम मान्यता दी जाती थी, जब तक कि मनुष्य के हृदय से परमेश्वर के लिए, जिसने मनुष्य के लिए इतना कुछ दिया था, बलिदान करने की अभिलाषा समाप्त हो गई। लेकिन कटनी के समय वे वही काटेंगे जो उन्होंने बोया है।
परमेश्वर कहता है, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुना किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगा, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन तुम पर आंधी के समान भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम पर संकट और यातनाएं आएंगी। उस समय वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु न पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको न भाया। उन्होंने मेरी सम्मति न चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल को भोगेंगे और अपनी योजनाओं के फल से अभाएंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। नीति वचन 1:24-31-33। अब इसराइलियों ने स्वयं को प्रभु के सम्मुख दीन किया, तब वे पराये देवताओं को अपने मध्य में से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे, और प्रभु का प्रेम पूर्ण हृदय खेदित हुआ, इसराइलियों के कष्ट के कारण खेदित हुआ। आह, हमारे परमेश्वर की चिर सहिष्णु करुणा! जब उसके लोगों ने उन पापों को त्याग दिया जिनके कारण परमेश्वर की उपस्थिति बाहर हो गई थी, उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उनके लिए कार्य करना आरंभ कर दिया। गीलात के यिप्ताह नामक व्यक्ति को उनके मुक्तिदाता के रूप में खड़ा किया गया, जिसने अम्मोनियों पर चढ़ाई करके उनकी शक्ति को नष्ट किया।
इस समय इसराइल ने 18 वर्षों तक अपने शत्रुओं के अत्याचार को सहन किया था, लेकिन वे फिर से उस सबक को भूल गए जो कष्ट ने उन्हें सिखाया था। जब परमेश्वर की प्रजा बुराई के मार्ग पर लौट गई, तो उसने उन्हें उनके शक्तिशाली पलिश्ती शत्रुओं द्वारा उत्पीड़ित होने दिया। कई वर्षों तक उन्हें लगातार सताया गया, और किसी किसी समय इस निर्दयी लड़ाकू जाति द्वारा पूर्ण रूप से अधिकृत कर लिया गया। इसराइली इन मूर्ति पूजकों के साथ मिलजुल गए थे, उनके आमोद प्रमोद और आराधना में सम्मिलित हो गए थे, जब तक कि वे रुचि और स्वभाव में उनके साथ एक हो गए। फिर इसराइल के ये तथाकथित मित्र उनके कट्टर शत्रु बन गए और प्रत्येक साधन से उनका विनाश करने में जुट गए।
इसराइल के समान मसीही भी प्रायः संसार के प्रभाव को समर्पण कर देते हैं और अधर्मियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखने के लिए उसके सिद्धांतों और रीति रिवाजों को मानने लगते हैं। लेकिन अंत में ज्ञात होगा, यही तथाकथित मित्र शत्रुओं में सबसे खतरनाक है। बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि परमेश्वर के लोगों और संसार में कोई सामंजस्य नहीं हो सकता। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। यूहन्ना 3:14। हमारा उद्धारकर्ता कहता है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यूहन्ना 15:18। परमेश्वर के लोगों को भरमाने के लिए शैतान दिखावटी मित्रता की आड़ में अधर्मियों के माध्यम से कार्य करता है, ताकि वह उन्हें परमेश्वर से अलग कर सके, और जब वे बचाव से वंचित हो जाते हैं तब वो अपने कर्मकों को उसके विरुद्ध कर देता है और उसके विनाश को परिपूर्ण करने में जुट जाता है।